करते जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल क्या है, जिसका पूर्ण विश्वास होता है करते हुए भी बस ईश्वर में पूर्ण सब वो काम है, पर जिस समय वो दूसरे हमला करते हैं ना सारे बाहने या परेशानियां कोई चीज वो बात करते हैं तो माइंड बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है कि वो ये क्या सब तरह से बातें सुननी पड़ती हैं ये है वो है। लेटर वो भी ही कबूल करते हैं कि जो ईश्वर के हाथ में इंसान के हाथ में कुछ, पर ये ना कि लोगों में संसारिक लोगों में आदत है कि फौरन किसी को सपोर्ट करने के बजाय और
बोल देते हैं जैसे हमारी बेटी का जैसे नहीं होगा काम तो सब कहीं नहीं कहीं जैसे सहयोग अभी खुले वो तो और वहाँ से तो बहुत परेशानी तो हमें कुछ ऐसे सुनना पड़ता है, हमें विश्वास है भगवान जो करेंगे ठीक करेंगे, कुछ ना कुछ बोल देते हैं लोग तो बड़ा मन में दुख होता है, हम कहते हैं भगवान की भक्ति के ऊपर क्यों आ जाए, जैसे बोले आप ऐसे करते हैं आपका काम बहुत ऐसे लोग मिलते थे जैसे आपका कॉम्प्रोमाइज हम कर नहीं पाते हैं, थोड़ा सा मन विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है, दुखी नहीं होना चाहिए, हो जाता है दुखी भगवान के तुम्हारा संसार
हो जाएगी तो फिर आपका मन चलता
है,
जब तक शादी हो रही है तब तक लोग कुछ ताने वाने
करते
हैं, जब इसका सब ठीक हो जाएगा आपका रास्ता एकदम पूरा साफ हो जाएगा। समय होता है साधन का कठिनाइयाँ मालूम किंतु वही कठिनाइयाँ हम लोगों के लिए वरदान के रूप में आ जाती है, भजन करने से कुछ ऐसी कठिनाइयाँ आ सकती है, अब हम लोगों के लिए वही वरदान किंतु अभी गृहस्थों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए चिंता निर्वास का भगवान का प्रहलाद महाराज जी राजा इसलिए कभी भी घबराए नहीं, हम लोग
कह देना अभी कंफर्म करेंगे अभी कहें मत देना कब आ रहा
है
अभी
करना अभी कर लेते
जगत वाले जो हैं एक दिन ये रियलाइज करेंगे जो हम लोग ठीक पथ पर नहीं हैं, भले ही वो ताना मारे जो कुछ करें और हम लोग ठीक पथ पर हैं, हम लोग अभी भी रियलाइज करते हैं और कभी भी सामूहिक रूप में वो लोग कहें तभी आप लोग घबराएं, आप लोग ठीक पथ पर, आपके पथ पर कृष्ण हैं, आपके पथ पर रामचंद्र जी, आपके पथ पर हनुमान जी हैं, आपके पथ पर शंकर जी हैं, नारद जी हैं, प्रहलाद जी हैं, चारों कुमार लोग हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, फिर अब घबरा नहीं हमको
देखो
हमारा पथ एकदम ठीक है पूर्ण है, उन लोगों का भटकाव में है वो नीचे गिर जाए, एक दिन उनको छोड़कर के शांति और सुख के लिए इधर जाना पड़ेगा, उनका पथ प्रमाणित है
भक्ति और थोड़ा बहुत भजन करने के बाद अभी तक जो मेरे में उन्नति हुई वो यही है कि अब ये पक्का विश्वास है कि वो गलत है ये पथ ठीक, मतलब अब यहाँ डेविएशन पहले होती थी कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम अंधविश्वास
होता है,
नहीं हमें तो कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, यही घबरा जाते हैं जब लोगों का काम तो सबके होते जा रहे हैं, हमारा नहीं जब काम होता है हम कितनी चेष्टा करते हैं, तुम सोचते हैं
अरे हम तो किसी से मानते जैसे माता के पुजारी हैं, वैष्णो देवी गए जी ये है हम इतने
कोई मन्नत मान के उनकी मन्नत पूरी भी हो जाती है, हमने कहा हम तो कृष्ण भगवान की करेंगे, हम तो और कहीं जाएंगे नहीं, तो वो जाते हैं उनकी मन्नत पूरी होगी काम हो गए सब ऐसे होता है, तब थोड़ा सा
मन्नत कर लेंगे
नहीं
क्या है
ना, हमें
भगवान कृष्ण ऐसा करते
हैं
इसका मतलब है वो तुम्हारे पुराने
काम
काट रहे हैं
अपने तो कहे मांगना चाहिए, आपने तो कहे मांगना
सैनी की पूजा की
सत्यायनी की है
और श्रीमती राधिका जी ने भी सूर्य की पूजा वो सब तो उन्हीं के ही राधिका जी के ही अंश देवता देवी सब लोग हैं,
जैसे तो मना करते हैं कि कुछ मांगना नहीं चाहिए सैनी की तो मांगना नहीं चाहिए
कृष्ण के लिए
मान लिया कि हम गणेश जी से भी कहते हैं आपके पास में कृष्ण भक्ति है तो दे दीजिए, तो ये क्या हो गया?
ये तो ठीक है लेकिन कोई संसारी चीज
नहीं, आपको उनको भी कहा आप हमको कृष्ण भक्ति दो,
वो तो ठीक
है। उस बच्ची से कह दिया जो तुम हमको कृष्ण भक्ति दो,
नहीं वो तो ठीक है, दूसरी कोई चीज और मांगे संसारी, हम संसारी चीज की बात कर रहे हैं, संसारी चीज मैंने जो लोग देवी देवताओं से मांगते हैं वो तो संसारी चीज नहीं मांगते, भक्ति तो नहीं मांगते, भक्ति तो नहीं मांगते, ये हम बता रहे हैं।
वैष्णव लोग
जो जाते हैं
भक्त लोग है ना, सब लोगों से प्रेम रखते, या तो कृष्ण भक्ति उनको देंगे या लेंगे छल से कल से कौशल से। नारद जी ने गणेश जी पहले ये सख्त थे,
सच्ची बात
कि तो नारद जी ने उनको छल बल कौशल से उनको लोभ दे करके भक्ति में लिया। कभी कैसे देवता लोग पृथ्वी का इनकी परिक्रमा कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे, ये हमारी पूजा सबसे पहले,
जो पहले पूजा करेगा हमें पूजा सबसे पहले होगी।
तो नारद जी ने देखा जी से ये तो दूसरे तरफ नहीं, ये सब चले जा रहे हैं। अच्छा तब गणेश को ही जो सबसे दुर्बल है जो कि चल नहीं सकता है, चूहे पर चलता है, तो इसको मैं सबसे यदि बना दूं सबसे पूज्य सब काम चलेगा। कजे राम नाम लिखो यहाँ, और राम नाम लिखवाया कजे इसको तीन बार प्रणाम परिक्रमा कर, बस परिक्रमा कर लिया। देवता आए उन्होंने कहा जैसे इसने तो पृथ्वी की तीन बार परिक्रमा कर ली, तो कैसे परिक्रमा कर ली? तो राम नाम की परिक्रमा कर ली, राम के अंदर में तो लाख कोटि विश्व ब्रह्मांड है, भक्ति करा करके राम नाम की महिमा उजागर करने के लिए और गणेश जी की पूजा सबसे आगे करा दी।
कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने माता पिता की परिक्रमा कराई थी, शिव पार्वती
पुराणों में वैसा नहीं, वो सब बातें थी,
पुराणों में राम नाम का है, से राम नाम की महिमा करा दी गणेश हमने अब राम के बारे में।
भाई जो उनका हाथी का मैं ये एक्चुअल में बाद में लगा था, इसकी क्या
वो हुआ? शंकर जी और पार्वती जी की शादी हुई किंतु कोई बच्चा था नहीं, तो एक दिन वो स्नान करने गए तो देखा जैसे एक आदमी को यहाँ रख दीजिए कोई आए नहीं, किसको रखें? तो उन्होंने ऐसे गले में किया तो कुछ मैल निकाल आई, तो ऐसे ऐसे कर करके जैसे हम लोग गोल बना करके और फेंक देते हैं पसीना पसीना हो जाता, तो ऐसे पसीने से वो लगे हुए थे और मैल निकाल कर ऐसे के ऐसे कर करके फेंक दिया तो एक सुंदर बच्चा हो गया। माता जी को प्रणाम किया, माता जी ने आपकी क्या सेवा करो, तो तू यहीं पर खड़ा रहना, किसी को आने मत देना, मैं स्नान करूँ। वो स्नान गृह में गई स्नान करने, इतने में शंकर जी उनको खोजते हुए देख रहे जैसे किधर गई किधर गई, तो जैसे ये लड़का कहाँ से आ गया? तो वो जा रहे थे तो लड़के ने कहा जैसे इधर मत जाइए, तुम कौन है? तो मैं कोई भी हूँ, आप उधर में मत जाइए, मेरी माता जी उधर में स्नान कर रही है। अरे तुम्हारी माता जी हमारी तो लगती है ना, हमारी पत्नी लगती है, तुम्हारी भले ही माता जी लगे, तो पत्नी के लिए पति को कोई आदेश किसी से लेने की जरूरत नहीं होती, तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। बस राहुल शंकर जी ने अपना त्रिशूल लेकर के उनका ही गला उतार करके फेंक दिया। इतने में पार्वती जी ने देखा जी हो हल्ला किस लिए हो रहा है, तो निकल करके आया अरे हमारे बेटे को आपने मार दिया, आप जल्दी से इसको जीवित करें। और रोने लगी, कन्या चाहे ऐसा बात करो ये कोई भी सामने आए उसको पकड़ लिया और उसका सिर ले आओ, हम इसको जोड़ बन रहे थे, अब वो सिर नहीं जुटेगा पहले वाला, नया शरीर होना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत देर की बात हो गई, एक हाथी जा रहा था ना उसको हम काट करके और उसका सिर लगा। तात्पर्य ये है मनुष्य का शरीर होने पर ही भक्तों को और भगवान की सेवा नहीं करता और आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है तो वो हाथी के समान जानवर है, उनको कहते हैं गणाधिपति। एक गण होता है अर्थात ये समस्त भारत मिलकर के एक गण राज्य है और भोट के अनुसार में राज्य चलता है, सब मिलकर के जिसको गधे को यदि कह दे प्रेसिडेंट है तो वो प्रेसिडेंट
हो गया,
इसका विचार नहीं है। इसको कहते हैं गणाधिपति गणराज, और हम लोगों का विशेषज्ञ का आदर होना चाहिए, क्वालिटी का आदर होना चाहिए, क्वांटिटी का नहीं। वो क्वांटिटी के अधिनायक हैं, गणाधिनायक, और हम कहते हैं क्वालिटी का आदर होना चाहिए। जो क्वालिटी है वो भगवत भक्ति जिसकी रहती है वही क्वालिटी है, वही जगत में श्रेष्ठ है। और भोट के अनुसार में जो बात होती है कोई भी लाभ नहीं, लाख अनएक्सपर्ट लोग कोई भी काम करे तो गड़बड़ हो जाए, और एक एक्सपर्ट व्यक्ति यदि वो काम करे तो काम हो जाए। एक हनुमान जी लंका जा करके उसे गिरा करके जला करके चले आए, और लाखों असुर लोग कुछ न कर सके। इसलिए जो भगवान का भजन नहीं करता उसका मस्तिष्क जानवर के समान है, वो क्या है ना, धर्म ही नहीं ना पशु ही समान है। इसलिए उनका शरीर आदमी का और बुद्धि पशु का, क्योंकि शंकर जी को उनकी पत्नी के पास में जाने के लिए मना किया और भजन का वहां पर कुछ था।
हाथी
वो हाथी की बुद्धि और सबसे जड़ होती है।
तो कोई भी शुभ कार्य जब करना होता है तो गणेश जी की पूजा करते हैं,
इसलिए कभी पीछे से राम की उपासना गणेश नारद जी ने उनसे करवा करके और उनको पवित्र बनाया,
गणपति से गणेश बना दिया।
और एक बात है, ये गणेश जी जब ये पुराण लिख रहे थे व्यास जी, 18 पुराण है ना, पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में लाखों श्लोक, कितने लाख बहुत बहुत बड़ा था। उसके एक एक अक्षर को समझना ही बड़ा कठिन, और वैसा ग्रंथ बनाना और लिखना तो क्या है। उन्होंने कहा जिसमें ग्रंथ बनाऊंगा कोई लेखक होना चाहिए, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा ने कहा आप वेदों को उपनिषदों को शास्त्रों को पुराणों को प्रकार मैं एक लेखक थे, जैसे गणेश को बुलाओ, गणेश को बुलाया गया, मैं जब मैं नहीं लिखता, मैं मुहर्री के लिए और का काम नहीं करता, ये तो मेरी बड़ी सारी बेइज्जती है। मैं विद्या का सबसे पारंगत, सबसे बड़ा विद्वान, और हमको ये लिखने के नहीं लगा। ब्रह्मा जी ने कहा जी ऐसी बात नहीं है, ये जगत के कल्याण के लिए हो रहा है। व्यास जी ने कहा चलो ठीक है, तुम किस तर्क पर लिखे? उन्होंने कहा उस तर्क में लिखेंगे, हमारी कलम बंद नहीं होनी चाहिए, लगातार एंड साउंड का एंड बोलना चाहिए। यदि आप ठीक हो जाएंगे हमारी कलम बंद हो जाएगी तो हम नहीं लिखेंगे,
बंद हो गया तो नहीं लिखेंगे।
व्यास जी ने कहा एक बात मेरी भी साथ है, कलम तुम्हारे नहीं रुकेगी, किंतु मेरे वचनों को तुम समझ करके नहीं लिखेगा तो तुम्हारा सिर उड़ जाएगा। तुम्हारे वचनों को पहले
नहीं समझना,
लिख रहे हैं थोड़ा घर लिख रहे हैं, और बीच में इतने में फुर्ती से एक ऐसा श्लोक बनाया जिसका अर्थ मालूम होता है कि उल्टा है, उसका अर्थ ही समझ नहीं है, बड़ा कठिन। बस वो चिंता करते लग रहे, इतने में चिंता करते करते उन्होंने हजार लाख श्लोक बना दिया और धड़क कर, फिर बीच में एक ऐसा श्लोक दे दिया, चिंता करने लगे ऐसे सिर्फ हाथ रख करके कलम बंद कर दी।
श्लोक आते गोमांसम पतितम दृष्ट्वा खंड खंड महितले शिवा काकन खादन्ति खादति खादन्ति पंडिता जन।
इसका बतलाओ,
गोमांसम पतितम दृष्ट्वा गोमांस सुगर्ण गोमांसम पतितम दृष्ट्वा खंड खंड महितले, इसका साधारण अर्थ गोमांस टुकड़ा टुकड़ा होकर पिछली में गिर रहा है, शिवा काकन खादन्ति शिया और काकुआ इसको नहीं खा रहा है, ताकि उन लोग खाता है नहीं खा रहा है, खादन्ति पंडिता जन, पंडित लोग खा रहे हैं। अब दिवस में बताया गया जिसका दिवस जिला बुद्धि है उनको पंडित कहा गया, तो इसका सामंजस्य कैसे, ये भी एक बैकट्रूट है। गो मतलब वेद, मांस होता है सारभार, वेद के सारभार वैसे ने विभाग किया,
वो बोले होता है वेद, हम मंस मन होता है
हाँ, हाँ,
वेद का सार मीमांस
ये सब किसी में विस्तार हो रहे हैं। शिवा का तो नखारंती शिया और कुआ ये सब क्या खाएगा, उनको आसरण नहीं कर सकते
हैं।
पंडित आ रहे हैं, पंडित लोग हैं, भक्त हैं, उनका आसरण कर रहे हैं।
ऐसे कई लोग
कहते
हैं
ना, तो
है कि
मांस खा रहे हैं, गौ का अंदर तो वेद
है। ये तो साधारण चीज है,
ये साधारण चीज है।
बदम चित्त विदम जैसे ज्ञान अव्ययम, अव्यय जो ज्ञान है वो कृष्ण है। कैसे हैं ये हजारों लाखों आदमियों को समझ में, गुरु परंपरा से नहीं समझेगा तो
नहीं समझ आती है, आम आदमी को नहीं समझ आती
है। अव्यय ज्ञान कृष्ण है। कैसे अव्यय माने कृष्ण के अतिरिक्त जगत में कोई दूसरी वस्तु
है नहीं,
अब ये कैसे, क्या ये कृष्ण है? किंतु कारण ये कृष्ण से ये पृथक नहीं है, ये कैसे?
इसे बनाने वाला जो है वो तो जीव,
ये जो है ना बनाने वाला
तो जीव है, तो वो जीव जो है वो जो दिमाग है वो तो भगवान का दिया हुआ है।
उसके अतिरिक्त भी ये जो कैसे बना, इसका
धोखा है,
मटीरियल है। अच्छा, ये मिट्टी कहाँ से आई? भगवान की शक्ति, शक्ति कहाँ से आई? भगवान शक्ति और शक्ति मानदो में एक है। इस तरह से सबसे संबंध की चिंता, किसी संबंध को आदमी जान जाता है तो भक्ति मुक्त हो जाता है, और भक्ति के अतिरिक्त जानने का दूसरा उपाय है।
महाराज जी हमें कई जगह से आता है मन में कि गोलोक धाम में कौन सी भाषा बोली
है, जो आपको सबसे सरल सहज सहज रूप में
हिंदी के संस्कृत क्या बोलते हैं?
किसी ने मारे पूछा, मारे प्रेम की भाषा
बोली
है, अंग्रेजी समझ जाते हैं।
ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है, जीव नहीं है जो नहीं समझते वहाँ पर।
हम तो पंजाब से हिंदी समझते हैं, अंग्रेज लोग हिंदी समझते हैं, और पारसी लोग पारसी समझते हैं, जर्मनी से
सब वहाँ पर एक सबका उद्गम वही भाषा है।
तो वो आपस में कौन सी बोली भाषा बोलते
हैं? कह रहा है ना प्रेम की भाषा
नहीं।
अच्छा मान लिया कि किसी से हम आपसे हमारा परिचय नहीं, कोई भी परिचय नहीं, मैंने आपसे इशारा की इधर आ जाओ, ये समझिए कि नहीं?
जैसे हम अभी यूरोप की गए थे तो उन्होंने कुछ निशान बनाए हुए थे, तो वो हम निशान का मतलब ये होता है, तो हम वो देखते थे तो फौरन समझ जाते थे ये टॉयलेट है, यहाँ पर ये रास्ता है, इसके लिए ये है, यहाँ से बस मिलेगी।
तो इस प्रकार की बात है ना,
वहाँ पे जैसे शादी वगैरह कोई चीज नहीं है, बस एक एहसास है गोपियों को कोई हमारी शादी हुई है, जिससे उनका वो उनसे टाइप का रिलेशन है, एहसास।
अच्छा किसी को कहते हैं अभिमान, वहाँ पर ये भाव या अभिमान, जन्म मरण वहाँ नहीं।
यशोदा माता उनको भी
यही है,
जन्म तो नहीं
है,
जन्म नित्य जन्म ही निका है,
नित्य लीला जिसे क्या कहते हैं,
पौगड़ सेकंड सेकंड में जन्म होता रहेगा।
नहीं वो कहते हैं बृहद भागवतम के हिसाब से तो एक लीला चलती है, वहाँ पे जाती है, फिर समाप्त फिर इस तरह से
भूमंडल के लिए जो है उसमें चक्र की भांति चलती रहती है, उसमें एक रिंग वैसे आगे आगे बढ़ती जाती है, पीछे से सिमटती आती है, फिर आगे बढ़ती जाती है। ऐसे
ये प्रकट धाम प्रकट में अप्रकट में ये नहीं है,
नित्य है।
पुरुष भी है
क्या?
है पुरुष
है क्या? नंद बाबा है ना, श्रीराम सुबल सिखा इत्यादि है, उपानंद इत्यादि जब सब लोग हैं, नित्य हैं कृष्ण।
हमें तो जानना चाहिए हम फीमेल फॉर्म
में, हम गोपी हैं, फीमेल फीमेल नहीं, हम कृष्ण की प्यारी गोपी न फीमेल है न मेल है, वही है बड़ी सुंदरी, कृष्ण भी देख करके लुप्त हो गए ऐसी है ना, और रसोई बन गई है
भोग लगाया ना,
भरत थे ना, भरत जी का नाम राजपुर करके चले गए थे भोजन खाने, हिरण को देखा, हिरण में आसक्त हो गए, और उसी समय में काल उनका आया और हिरण की चिंता कर रहे थे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, क्योंकि उसको प्यार करते थे ना, गोदी में रखते थे, पुचकाते थे, वो भी उनके ऊपर गोदी में चढ़ जाता, एकदम पुत्र से भी प्यारा हो गया था। और मरते समय में उसी की चिंता कर रहे थे, तो मर करके क्या हुए। और वैसे यदि हम गोपी चिंता करें तो सुंदर उसमें मरते समय तक भी ऐसा, तो हम गोपी नहीं होंगे। वो तो हिरण था जड़, और गोपियां तो जड़ नहीं, अप्राकृत है। गोपी खाओ, ये साधारण सी थ्योरी है, आ रहा है समझ में।
तो कहीं पूछे भगवान चिंता करते नहीं, भगवान बन जाऊंगा।
भगवान की चिंता करेगा ना, तो जो रीति है उस अनुसार से ऐसे भगवान की चिंता कर, वही तो जाते हैं ब्रह्म हो जाते हैं, हो जाते हैं कोई चतुर्भुज हो जाते हैं भगवान के समान।
नहीं, जो भक्त है वो भगवान की चिंता नहीं करते, भगवान की सेवा की चिंता करते,
चतुर्भुज भगवान की ध्यान। कोई भी मायावादी अद्वैतवादी कृष्ण का उस रूप में ध्यान नहीं करेगा जो मैं वही कृष्ण बन जाऊं, क्योंकि भक्तों का संग होगा, उसको रिफार्म करके भक्ति में लाइन में लगा देंगे। किंतु कृष्ण गोप है ना, गोप बन जाएगा। कृष्ण की श्रीमती राधिका जी गोपी हैं, गोपी बन जाएगा।
लेकिन इसमें महाराज जो हमारा स्वाभाविक रूप है वो मेन पार्ट अदा नहीं करेगा, जिसे
वही स्वभाविक ही रूप सब काम कराएगा।
भले हम गोपी के चिंतन करें पर स्वभाव में हमारा उनसे संबंध होने
जब है तभी हमारी रुचि होगी, ना
तो नहीं
होगी।
वो
है भीतर में कुछ सब ऐसा। और सब लोग आपके यहाँ हमारे यहाँ क्यों नहीं आ जाते। भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है जैसा वैसे ही व्यक्ति चित्त वृत्ति वाले लोग इधर आए, महाप्रभु जी के विचार
हर एक के अंदर परमात्मा स्थित है, तो
बहिमुख
क्यों होते हैं लोग।
वो माया है ना, माया के होते, माया भी अद्भुत, माया है तो जड़, किंतु चेतन को भी लुप्त कर देते हैं, क्योंकि ये छोटा है, पार्टिकल है ना, पार्टिकल के वजह से। जैसे मान लो कि थोड़ी सी आग, थोड़ा सा एक चुल्लू पानी दे दिया तो वो बुझ जाएगा। मान लीजिए कहीं पर आग लग गई है, वहां पर एक चुल्लू पानी देने से थोड़े वो बंद होगा, क्या होगा, वो तो घी का काम करेगा, उसके लिए दमकल चाहिए। और यदि जंगल में आग लगी या पानी में आग लग गई समुद्र में, तो दमकल का बाप भी आकर के कुछ नहीं कर सकेगा। तो जीव छोटा है, भगवान की माया बड़ी है, बस जीव के स्वर छोटा। अब जैसे देखो, मान ले कि एक रसगुल्ला खूब सुंदर, बहुत स्पॉन्ज रसगुल्ला रख दिया, हम लोग हैं, हम लोग नहीं खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे, तो नहीं खाएंगे। एक छोटा सा बच्चा शिशु है, उसको छोड़ दो तो वो क्या करेगा, उसको मना करो कि तो लपक करके खाए। ऐसे ही जीव की अभी बुद्धि छोटी है, अभी जीवाणु भी है छोटा सा पार्टिकल, माया उसका। किंतु वैष्णव का समय यदि पा गया हो फिर माया कुछ नहीं।
जैन धर्म के हिसाब से महाराज, उनके जो भक्त आए हैं उनमें सखा भाव के भी थे और मंजरी भाव के भी थे, ब्रजनाथ और वो जो बने उन्होंने अपने गुरु
दो का ही वर्णन किया और बाकी तो सब उसमें व्यक्त नहीं किया, उसमें सभी प्रकार के।
नहीं, इसका तात्पर्य ये लग रहा था कि महाप्रभु के ही परंपरा में लोग आ रहे हैं तो सभी रस के उसमें सम्मिलित हो हैं।
अक्षरवास इत्यादि थे वो दास रस के थे, कोई सख्त के थे, किंतु अधिकांश गोपी भाव।
दूसरा, आपने जो हिरण का भरत का बताया महाराज, गीता में भगवान कहते हैं कि जो मेरी योग विद्या में आगे बढ़ता है, तो भागवत भी ये कहती है जिसने भगवान की भक्ति स्वीकार की है अगर वो अधूरी छोड़ देता है तो ऊंचे लोकों में जाएगा या वैष्णव के यहाँ जन्म लेगा, ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं आया कि वो।
यदि कोई भक्त भगवान का ही आराधना कर, यदि कोई बाधा आई या मृत्यु हो गई, तो सुचिना सीमतांग गेह पवित्र घर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और कुछ माने खाने पीने की कमी न हो,
अमीर घर में
और खूब अधिक समृद्ध न हो, ऐसे मध्यम क्लास के लोगों के यहाँ जिसकी धार्मिक शिक्षा बढ़ती है उसके धर्म जाने का, और फिर जहाँ से पीछे छूटा था वहीं से आना, अभिक्रम जो किया आरंभ किया उसका विनाश नहीं होता है। भक्ति राज विनाश एक स्थिति में होगा, यदि आपने जान बुझ करके द्वेष किया अपराध किया तब तो हो जाएगा, अन्यथा नहीं।
तो ऐसी स्थिति में भरत महाराज हिरण बने, वो तो मतलब उन्हें सियोनी से नीचे चले गए ना, ये इस नियम का अपवाद नहीं है?
नहीं,
भक्ति करने के बाद योग में गिर गए वो सब?
नहीं, ये तो लिखा ना जंग जंग वापी सजन से थे कलेवरम, मरने के समय में जैसे जैसे जिस चीज की चिंतन करता है जिस स्थिति में उसको जन्म होता है इस संसार उनका वो
ये लेकिन ये भागवत का ये जो नियम है कि जिसने भगवान
का संग किया होता है उतनी आसक्ति मरने के समय में नहीं होती तो मनुष्य जन्म हो जाता है।
नहीं, भागवत का जो ये श्लोक है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने मुकुंद के चरणों का शरण लेके फिर वो गिर भी गया हो तो उसका कभी क्या कोई विनाश हो सकता है? नहीं हो सकता
विनाश तो भगवान,
इसका मतलब यही मानेंगे कि हिरण में जाने का मतलब विनाश नहीं बल्कि
किंतु वो संतों के संग में रहता था, उनकी कथा सुनता था, उनका प्रसाद ग्रहण करता था, गंगा के किनारे रहता था
और याद भी सब कुछ था।
अब थोड़े दिन के बाद में फिर उसको शरीर को छोड़ दिया और फिर
तो कुछ मार ऐसे लोग होते हैं जो इसी जन्म में भक्ति करते हैं थोड़ी उम्र तक फिर छोड़ देते हैं ऐसे।
और इस्कॉन की तो बहुत सारी
नहीं होता है।
तो उनका क्या होता है?
जो लोग भक्ति का थोड़ा सा अनुकरण करते हैं भक्ति नहीं करते हैं वो लोग छोड़ देंगे, यदि थोड़ा सा आरंभ कर दिया फिर भक्ति नहीं छोड़ते। कभी नहीं, कभी मान लिया कि थोड़े समय के लिए स्थगित हो सकती है किंतु अविनाशी है ना, नित्य है, इसलिए कभी भी।
जैसे हमने अपने मठ में देखा है कई लोग बहुत 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 अच्छी प्रगति करने के बावजूद भी गिरे।
आपने गिरा देखा? क्या गिरा? गिरा किसको कहते हैं?
विवाह कर लिया, हमें तो वही लगा,
हम इसको गिरा नहीं मानते। ये बात तो इसका भी होगा तो ये गिर जाएगी।
संन्यास के बाद विवाह ले लेते हमें चाहिए।
भक्ति से नष्ट नहीं, भक्ति विरोधी काम यदि वो करता तब उसको पसंद।
ऐसे मांस खाना शुरू कर दे, शराब पीनी शुरू कर दे,
ये भी कोई गहरी बात नहीं। यदि वैष्णव का नाम सुनने से ही आग बुगला हो जाता है, उनके प्रति आक्रमण करता है, उनको मारता है, उनका बदनाम करता है, उसका विरोधी भाव हो जाता है भगवान या भक्ति का,
मायावादी बन जाता है
वो, ये सब पतन है। और बाकी तो थोड़े दिन के बकरी किसी पेड़ को चढ़ गई, कुछ दिन के बाद में फिर पत्ता निकल आया, फिर ठीक हो गया। माया रूपी बकरी है ना, उसको चढ़ गई आ जा।
ऐसा व्यक्ति
मान्या के कोई एक श्रद्धालु, उसने सोचा अपनी सुविधा और असुविधा, संन्यास लेने से हमको बहुत अपमान हो जाए, उनको दिन ही होकर के भगवान का भजन, यदि एक हमारा कोई साथी ऐसा मिल गया जो दोनों मिलकर के खुद भजन करे, और ऐसा साथी मिल गया वो साथ मिलकर के भजन करे, आलोचना आलाप के द्वारा सदगुरु पदार्थ होकर के, इसको हम पतन करेंगे।
विवाह से जनरली लोग नहीं जाते हैं, विवाह के लिए विशेषकर
पुरुष
लोग तो विशेषकर, मेरे हिसाब से अगर कोई लड़का विवाह करना चाहता है तो उसके अंदर थोड़ा सा
माया की भावना तो है किंतु बर्बाद होने की अपेक्षा एक जगह रह करके अपना
ज्यादा उठाए।
नित्यानंद जी ने देखा है संन्यास से विभाजन किया, ऐसा कोई महापुरुष हो किंतु जहाँ तक हो सके पुरुष लोगों को भगवान का भजन, संसार से या लड़कियों को एकदम निरपेक्ष होकर के, और एक दिन आएगा भजन करते करते शरीर की भी शुद्धि होती है, जैसे नारी दूसरा भी है और सब का देखा जाता है। कि जीवन में निराकार भी देख लीजिए, कृपा तो किया उतना उसको कोई चेक नहीं कर सकता, रोक नहीं कर देंगे। भोजन के जो घर से है उसमें थोड़ा सा बिजनेस और चीजें इधर उधर से सामान ले आ करके
वो जो भी
आई हुई थी
साथ में थी, आप उनको कह रहे थे कि आप बहुत फल
हार्डली सब मिलती है और क्वेश्चन करती हैं खुद, मुझको प्रसन्नता होती है यदि कोई क्वेश्चन करे और क्वेश्चन अच्छे टॉपिक का, इसका मतलब है जैसे वो समझता है जो क्वेश्चन करता है कुछ समझता है।
हमारे यहाँ भागवत में ज्यादा मनोवृत्ति यही है, मतलब अभी तो हमने कि आगे तो क्वेश्चन करते ही नहीं थे, मतलब कोई या तो शुरू से ऐसा ही था, मतलब जो कॉलेज वगैरह में होते थे वो तो करते थे, बाकी स्कूलों में ये दिखाते कोई क्वेश्चन नहीं करना है।
हाँ, हम लोगों को क्वेश्चन करने सिखाया नहीं
सिखाते रहे, मतलब शुरू में हमें भी जब कौन में संबंधित हुए तो क्वेश्चन का पूछे तो हमें झिझक होती थी, भाई क्वेश्चन क्या पूछे, ये थोड़ी सी यहाँ पर एक दफा संशय आते हैं वो चीज आती है, हमने ये देखा सबके वो मन के अंदर जो संशय मेरे हैं वो कहने वाले रामचंद्र जी के इनके भी ऐसे कॉन्टेक्ट में आए तो देखते हैं कि कई चीजें सबके मनुष्यों के अंदर आती हैं, पर हम जाहिर नहीं करना चाहते थे या
जब मैं मायावादी था तब तो बहुत प्रश्न किया करता
मायावादी
तो मैं सीरियल वाइज प्रश्न नहीं है, जो भी जैसे जैसे मैं
एक बात आप लोग करेंगे
तुम लोग इस पर अधिक मत निर्भर आना, निर्भर आना अभी जो सुन रहे नहीं इससे नहीं रहेंगे, मैं देख रहा हूँ आप मेरे तरफ में देख रहे हैं, आप जो कुछ कर रहा बोल रहा हूँ उसको यहाँ से ग्रहण करने की जरूरत है, ये आपके यहाँ पर कैसे हो जाएगा
यही मैं कहना
चाह रहा हूँ, जन्म जन्मांतर वो भूलेगा नहीं,
यही मैं कहने जा रहा था कि अब प्रश्न उत्तर के खाली सुनने से बात नहीं बनती, अब तो ऐसा लगता है कि अंदर से खाली नहीं सुनना चाहिए प्रश्न का,
इसमें स्टोर करेंगे और इसे जान लेंगे पीछे से उतना सब किसी के पास याद ही नहीं रहेगी, फिर ये दवा का दवा
ये किसी को देने के लिए या किसी को आगे पास हम करने के लिए काम आएंगे, स्वयं को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्रश्नों का बचकाना अपन माफ कर दें, दीक्षा गुरु की क्या क्या विशेषताएं ये मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे अभी इनिशिएशन का चलता है कई लोग प्रश्न पूछते हैं, लड़के प्रश्न पूछते हैं, हमें जवाब देना है तो हमें अपने मैसेज से क्लियर होना है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में अंतर
जो तो शास्त्रों में कहा गया है जी सब से दिव्य ज्ञान और छान ने मैल को दूर करना साफ करना खाल, अब दिव्य से दी से जो दिव्य ज्ञान है इसको इस रूप में समझिए कि तीन प्रकार के गुरु होते हैं या वैष्णव होते हैं, एक तो वो हैं जो अपने आप भजन करते हैं किंतु दूसरों को तत्व समझा नहीं सकते किंतु है पक्के वो तस्मस इधर उधर नहीं जाएंगे, किंतु फिर भी दूसरों को अच्छी तरह से प्रश्नों का उत्तर दे करके और उसके हृदय को परिवर्तन करने में वो समर्थ नहीं, वो अपने से श्रेष्ठ किसी वैष्णव के यहाँ ले जाते हैं और उनके द्वारा प्रभावित होकर आते हैं या गुरु के यहाँ ले जाते हैं, एक तो ये है। दूसरे हैं जो प्रभावित तो कर सकते हैं, आचार विचार उनका देख करके भी दूसरे कुछ सीख सकेंगे, किंतु आंख से देख लिया या सिर पर हाथ रख दिया या हृदय से शक्ति संचार कर दिया और झट उसको
फर्क समझ गए, एकदम सिद्धि हो गई, कोई साधन नहीं करना पड़ता। ये तीसरे इस प्रकार के नारद ऋषि सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी इस को टिके हैं। साधन तुमने किया या नहीं किया इस पर कोई निर्भर है, बस उनकी कृपा दृष्टि हुई और बस काम एकदम प्रेम से रोने लगे, प्रेमी आपको हो गया, एकदम सदा के लिए प्रेम हो गया। ये एक ऐसा जैसे रसिकानंद नाम के एक बच्चों से श्यामानंद प्रभु के शिष्य एक जंगल से जा रहे थे और 20-25 हाथियों ने उन पर आक्रमण किया। पानी पी रहे थे एक सरोवर में, हाथी आया देखा और एकदम सिहार करके उनके ऊपर आक्रमण किया। वो पानी उठाया, उठा करके स्वक्षण किया, सब घुटने टेक दिए हाथी और कृष्ण 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 कहने लगे, आंखों से आंसू की जा रहा है। ये है शक्ति संचालित करने वाले सिद्ध महात्मा लोग। जैसे महापुरुष जंगल से जा रहे हैं, सांप हाथी घोड़े गधे हिरण बाघ सब एक साथ में चलने लगे और रोने लगे, तो ऐसे जो गुरु हैं उनका पाना बड़ा भारी गुरु किसी प्रकार से संभव हो जाए बहुत कठिन। वो लोग ऐसे हैं, भगवान की कृपा ऐसे मानी गई है कि कोई आदमी गया किसी आदमी से गया, वहां पर मंदिर है और वो राजा ही समझिए, उसके यहाँ कोई अतिथि गया साधु या ब्राह्मण कोई गया। राजा ने क्या चाहते हो, तो मैं भोजन चाहता हूँ, अपने पाक करके बना करके खाएगा या ठाकुर जी का भोग लगा हुआ है वो खाएगा। उसने कहा कि मैं तो अपने आप रसोई बनाता हूँ और खाता हूँ भोग लगा करके ठाकुर जी, सचित ब्राह्मण जैसे चैतन्य चैता में उसने वर्णन किया। जैसे इनको चावल दाल आटा चीनी घी दूरा इनको जो कुछ जरूरत है वो दे दो, लाइट दे दो और बर्तन इनको दे दो, सब कुछ इनको दे दो, ये अपने आप उसे बना करके खाए। और दूसरा ने कहा कि नहीं ठाकुर जी का जो भोग लगा है वो सर जी अभी बैठ जाइए, बस मालपुआ भोग इत्यादि जो कुछ पूरी कचौड़ी मान भोग हलवा जो कुछ लगा था उनको कहा तो बड़े प्रसन्न थे। उसी समय में बैठ गया और भोजन करते। भगवान की कृपा ऐसे ही दो प्रकार की, ऐसे एक दो प्रकार, एक रसोई बनाओ सब सामान दे दिया, ऐसे ही भगवान ने गुरु दे दिया और अनुकूल वायु कृपा दे दी और श्रद्धा से आरंभ करके सबसे पहले साधु संग दिया भगवान ने, साधु संग के माध्यम से वो गुरु जी के यहाँ पर वैष्णव के यहाँ पर पहुंचा, उनके वचनों पर विश्वास हुआ और फिर उन लोगों ने उनको गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता दी, वही भगवान की कृपा और गुरु जी की कृपा दोनों मिलकर के उसको कृपा करके भक्ति संचार किया। संचार करने के बाद में फिर उसको दीक्षा और मंत्र दिया, किंतु अनर्थ थे, अब अनर्थ को भी संशोधन कराने लगा, जब कृष्ण नाम करो और हरि कथा सुनो और ये काम करो नवदा भक्ति कर, अब वो करने लगा, करते करते उसको निष्ठा उत्पन्न हुई, फिर निष्ठा से रुचि हुई, रुचि से आसक्ति हुई, तब भाव भाव तत्व। ये साधन का क्रम भगवान ने ही संग्रह करके और उसको दिया और सब सुविधाएं उसको दी, नहीं तो नहीं होता। इन लोगों को हमसे कहाँ से भेंट हुई, आपने भेंट कराया, इसके बाद में धीरे धीरे मंत्र इत्यादि प्राप्त हुए, इसके बाद धीरे धीरे अनर्थ होते हुए, इस प्रकार से एक सीरियल ऑर्डर है जिस और किसी को हाथ रख दिया ऐसे और दृष्टि से शक्ति संचरित की उसका एक भाई, तो एक भाई एक प्रेम होने वाला, इसको कहते हैं अहित की दया। ऐसा कोई वैष्णव सिद्ध हो और या भगवान हो और किसी के ऊपर में ऐसे ही अहित की कृपा हो गई तो वो तो प्रेम हो जाएगा। ये शिक्षा हो गई।
पता बताया शादी हो
गई। ये हुई दिव्य ज्ञान अपने इसमें हुआ। प्रेम कैसे हुआ? साधन के द्वारा जो धीरे धीरे जो पाया या एक बाय एक सब कुछ इसको साधन के द्वारा वो पूरी बनाता, कचौड़ी बनाता, दाल बनाता, साग बनाता, दही मिठाई और सब चीजें हैं। बहुत समय लगता ना, अब उसको बना बना हुआ सब चीज एक साथ में मिल गया और खाने लग। अब वो प्रेम हुआ जो रोने लग गए हाथी या किसी को महाप्रभु जी ने कह दिया ऐसे तुमको प्रेम, उसमें क्या हुआ? इसमें जो जल्दी धीरे 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 हजारों जन्म में जो हुआ ना, इसको एक साथ में सब कुछ हुआ, उसके अनर्थ नष्ट हो गए, साथ ही साथ में उसको संबंध ज्ञान उदित हो गया। संबंध ज्ञान किसको कहते हैं? संबंध ज्ञान भी पांच प्रकार के हैं। एक शांत रस का संबंध ज्ञान, समझ रही? शांत रस का ये विश्व ब्रह्मांड के अधिनायक है, मैं उनका एक किंकर हूं, बहुत क्षुद्र। अभी किंकर का भी भावना है, ये बड़े हैं मैं छोटा हूं, ये हमारे उपास्य हैं मैं उनका उपास हूं। और एक होता है ये हमारे उपास्य हैं मैं उनका सेवक हूं, ये प्रभु है यह भाव। और एक ये हमारे सखा हैं मैं इनका सखा हूं, ये हमारे पुत्र हैं मैं इनका माता पिता, ये हमारे प्रियतम हैं मैं इनकी प्रियतमा हूं। ये संबंध ज्ञान कहलाता है। ये संबंध ज्ञान उदित होने के साथ में कृष्ण के जितने भी परिकर हैं उनसे वैसा ही संबंध हो जाता है, अलग से नहीं। आपके घर में आई विवाह के बाद में आपके साथ में जो रिलेशन उनके हैं वो सब रिलेशन को उसने ग्रहण कर लिया और एक सेकंड में ही घर में आते ही सबके साथ में संबंध हो गया।
पति से संबंध जुड़ते ही
बस सब और लोगों से संबंध, ऐसे कृष्ण के साथ में संबंध होते ही ब्रज के जितने भी परिकर हैं वो सबके साथ में संबंध है। इसके बाद अपने आराध्य को दर्शन किया, दर्शन किया किस रूप में? अत्यंत सुंदर किशोर रूप वाले हैं। मैया ने तो देखा जी छोटे से बालक हैं, बाल गोपाल, और गोपियों ने देखा अत्यंत सुंदर श्याम किशोर रूप। उनके प्रति जैसे दास होगा तो उन प्रभु के प्रति दास भावना से सेवा उदित होगी, उसमें कुछ लज्जा मर्यादा बोध, ये प्रभु हैं मैं उनका दास, ऐसा मर्यादा होगा। वो दंडता नहीं करेगा, हंसी दिलगी उनसे नहीं कर सकता, हृदय खोल करके नहीं बोल सकता, सब समय कुछ मर्यादा उसके प्रति। सखाओं के प्रति ये सब नहीं रहेगा, किंतु ममत्व का अभाव कुछ रहेगा। वात्सल्य में ममत्व अत्यधिक हो जाता है और ये समस्त गुण प्लस प्रियतम का अभाव उसमें आ जाता है, ये सब चीजें उसमें हो जाती, तब वो रोता है। ऐसा ही नहीं रोता, विरह में रोएगा, मिलन में आनंद से भर जाएगा वो जब प्रेम होगा। तो दीक्षा गुरु उसको कहते हैं जब तक हमारे अंदर में अभी अनर्थ है, संबंध ज्ञान उदित नहीं हुआ है, ये कृष्ण के साथ में हमारा क्या रिलेशन, साधारण ही रिलेशन ज्ञान नहीं है, उनसे कोई संबंध ही नहीं है। और हमारे अंदर में अनर्थ अपराध इत्यादि सब प्रकार के अज्ञान सब कुछ भरा पड़ा है। अज्ञान मैंने ये संसार बड़ा सुखमय है, संसार का सुख पाना ही जीवन का मूल उद्देश्य है, ये भाव है, और इसी में किसी न किसी प्रकार से इंटेंगल्ड है। बाहर से इनमें भाव के तो हम कुछ न उपलब्धि करते हैं न उसका ध्यान है। यदि 100 रुपए का नोट कहीं गुम हो गया तो उसके लिए जैसे हाहुताश होता है, साधुओं का संग दूर होने पर या कोई भक्ति विरुद्ध काम करने पर हमें कुछ भी नहीं है, ये सब स्थितियां उस समय होती हैं। गुरु वह है जो मंत्र के प्रभाव से मंत्र देकर सबसे पहले संबंध ज्ञान कायम करता है। जगत में तुम्हारा जो रिलेशन है वो झूठा और कल्पित है, इससे तुम्हारा कोई भी सुख या शांति या कोई भी लाभ नहीं होगा इन व्यवहारों से। कृष्ण ही तुम्हारा प्रभु है, तुम उनके दास हो, यह पहला संबंध ज्ञान है। हृदय में जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं? जैसे कोई अज्ञात लड़की, कोई अज्ञात लड़का, दोनों पास में बैठ गए और समाज के लोग बैठ गए, माता पिता गुरुजन बैठ गए, आग जला दी गई, हवन किया गया, आग को साक्षी बनाकर, समाज के लोगों को साक्षी बना करके, भले ही वो मंत्र कोई जाने और न जाने, उसने ये कह दिया कि ये तुम्हारी पत्नी, तुम इसके पति। अब वो सारा जीवन तक बिना रजिस्ट्री किए हुए पक्का हो जाता है और उसको सहज ही कोई नहीं मिटा सकता है ना। वो वरदान ही एक ऐसा होता है जो कि दोनों के हृदय में ऐसा हो जाता है और लोग भी जो है वो उसको सर्टिफाई करते हैं। ऐसे ही गुरु जी जिस शिष्य के हृदय में अनर्थ रहने पर भी संबंध दोनों का स्थापित कर देते हैं, यह है दिव्य ज्ञान। मैं संसार का कोई नहीं, हमारा शरीर इत्यादि ये संसार के पदार्थ हैं, जलवायु मिट्टी आकाश अग्नि इत्यादि के पंच तत्वों के बने हुए हैं। जिस समय काल आएगा ये सब बिखर जाएंगे, इनका कोई अधिक नहीं, कर्म से ये सब बनते हैं। इसके अंदर में आत्मा और परमात्मा है, प्रत्येक शरीर के अंदर वो परमात्मा प्रभु है और उसमें जो जीवात्मा है वो दास है। इस संबंध को उदित करने का नाम दिव्य ज्ञान है। अनुभूति परमार्थिक कुछ हो जाती है, ये तो हुआ दिव्य ज्ञान। और इसके होने के साथ ही साथ जहाँ उसने हरि नाम दिया, जो मंत्र दिया है, उन्होंने मंत्र देने से और भगवान का नाम करने से या भगवान की कथाओं के सुनने से पूर्व पूर्व जन्म के संचित जितने भी अपराध